Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444. 2342-1050 or 2331-0464. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar. हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे कैसा रहा इस सप्ताह अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जैसा कि आप सबको मालूम है श्रोताओं, आज दिन शनिवार का है और शनिवार के दिन हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तीन टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोले हुए हैं, नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-4464। तीनों नंबर दिल्ली के, 011 एसटीडी कोड के साथ नंबर डायल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है मार्केट एक्सपर्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में।
वार्म वेलकम शिशिर।
शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा, सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में।
लास्ट राइट्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह परफॉर्म्ड विद फुल स्टेट ऑनर्स एट निगम बोध घाट इन न्यू दिल्ली। Domestic benchmark indices rebound with 1% gain despite sell-off by foreign institutional investors. Union Minister for Consumer Affairs Prahlad Joshi directs Central Consumer Protection Authority to investigate allegations of differential pricing by cab aggregators.
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बावजूद लगभग 1% की उछाल, और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो कैब एग्रीगेटरों द्वारा एक ही रूट पर अलग अलग किराया वसूलने के आरोपों की जांच करें। सबसे पहले बात करेंगे कैसा रहा इस सप्ताह का शेयर बाजार। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में काफी सुधार रहा। पिछले सप्ताह की बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार आज इस सप्ताह संभले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 657 अंक बढ़ा है और इस सप्ताह ये यानी कल शुक्रवार को 78,699 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 225 अंक की बढ़त दर्ज की गई और ये 23,813 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करें, बीएसई मिड कैप में मामूली बढ़त रही जबकि स्मॉल कैप सपाट रहा है। हल्की सी चर्चा कर लेंगे इस पर शिशिर, बस बहुत जल्दी में एक लाइन में आप बता दें कि FIIs की बिकवाली के बावजूद DIIs का बेहद सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से मार्केट संभला है।
देखिए, ये एक ऐसा सप्ताह है जिसमें बोनस बुकिंग होती है और बोनस बुकिंग की वजह से जो है शेयर बाजार में आपने देखा होगा कि विदेशी निवेशकों ने बिकवाली करी है, लेकिन उम्मीद है कि नए साल में उनकी खरीदारी जो है वो हमें देखने को मिलेगी।
The final rites of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh were performed with full state honours at Nigam Bodh Ghat in New Delhi today. Earlier in the morning, his mortal remains were taken to the Congress Party headquarters and then to the funeral venue in a flower-decked vehicle. Union Home Ministry has announced that the government will allocate space for the memorial of the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. State mourning has been declared for 7 days till 1st of January. Dr. Manmohan Singh's life was dedicated to public service and the upliftment of the society. He will be remembered not only for his scholarly brilliance but also for his transformative contributions to India's economic and political landscape. We will begin our taking callers online now, and we have two callers, one from Delhi and the other from Mumbai. First, we go to Delhi to Yogesh Verma. A warm welcome, Yogesh.
योगेश शर्मा
जी
जी आप लोग को नमस्कार सर मेरे दो सवाल हैं एक तो ये है कि सेंटर रैली की बात होती है हर साल के सेंटर रैली इस टाइम पे आती है ये सेंटर रैली क्या कुछ खास देशों में आती है या इंडिया से भी रिलेटेड है और इसके क्या ट्रिगर होते हैं क्यों ये आती है और इस साल नहीं आई हालांकि और दूसरा सवाल सर एक ये है कि अगले साल 2025 स्टार्ट होने वाला है तो इसके लिए क्या निवेश के निवेश से रिलेटेड आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे
देखिए योगेश सेंटा रैली का एक नाम बोनस बुकिंग भी है और अमूमन होता क्या है कि क्रिसमस के समय जो विदेशी निवेशक हैं उनको अपने बैलेंस शीट को बेहतर दिखाना होता है ताकि उनको बोनस अच्छा मिल सके और वो अच्छे से त्यौहार मना सके तो इसको लेकर के एक रैली चलती है जिसमें बिकवाली ज्यादा होती है और आपने देखा होगा कि बीते सप्ताह जो है हमने शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की खूब बिकवाली देखी है लेकिन जब वो 3 या 4 जनवरी के बाद जब आपस अपने काम पर लौटते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो खरीदारी करेंगे और उसका असर जो है वो हमारे शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा सेंटर रैली की जहां तक बात है वो कई देशों में खासतौर पे पश्चिमी देशों में ये है कि एक तरीके से सेंटा का चूंकि एक प्रतीक बन गया है उपहार लाने का तो वो निवेशकों के लिए किस तरीके का उपहार लाते हैं और उसकी वजह से किस तरीके की खरीदारी या बिकवाली होती है दोनों चीजें होती हैं वो अलग अलग देशों में है हमारे देश में उसको जो नाम दिया गया वो है बोनस बुकिंग और आपका दूसरा सवाल था कि नए साल में किन क्षेत्रों में निवेश का आप सुझाव दे सकते हैं मुझे लगता है कि इस समय में दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अच्छी संभावनाएं बन रही हैं पहला तो आपका जो है वो वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे कहते हैं जिसमें बैंक भी शामिल है और खासतौर पर अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो वहां पर काफी अच्छी स्थिति दिख रही है दूसरा जो हमारा सेक्टर जिसमें काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है वो है आपका न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर हमने बीते कुछ समय से देखा कि अच्छी खरीदारी हो रही है और नए साल में भी उम्मीद है कि उसमें खरीदारी अच्छी बनेगी
Shishir, this week the Sensex has added 657 points. So should we say it is moving towards the Santa rally?
We should credit more to the domestic financial institution, not to the foreign institutional investors. So that is one of the reasons either you would like to call a domestic investor as a Santa, that's a different issue. But normally during this week, between 15th to 30th of December, normally we have seen that foreign investors goes for booking the profit so that their balance sheet is better and they get a good bonus on the right. eve of Christmas. So that is why it is also called the bonus booking period. So in India, we have seen this trend for almost last 20-25 years that during this period, you will find more and more outflow rather than the inflow. In terms of the Santa, of course, Santa is known for the gift. Gift could be also for investor and it could also for the institutional investors or institutions also. So in both way, you have to see that. So in this way, of course, the domestic investors and domestic institutions have become a kind of center because they are giving an opportunity to the foreign investor to earn profit on that.
Rakesh, हमारे अगले कॉलर होंगे दिल्ली से. Rakesh जी, क्या सवाल है आपका?
हाँ जी, मेरा सवाल शेयर के बारे में है. जैसे किसी शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी के इक्विटी बहुत बड़ी होती है. जैसे सैजिलिटी अभी इशू आया 4600 करोड़ रुपया या और भी कही है, एनटीपीसी ग्रीन है या और भी कही है, तो इनके इनका फ्लोटिंग स्टॉक तो बहुत मार्केट में होता है, फिर भी ये एकदम सैजिलिटी जैसे ये 2 महीने में 1-1.5 महीने में डबल हो गया. तो इनके लोअर सर्किट भी लगते हैं, ऊपर सर्किट भी लगते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि एक हाई जिनके इशू शेयर्स होते हैं फ्लोटिंग, ये इनमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है कि ठीक होता है?
राकेश जी, दो चीजें हैं. आपने चूंकि कंपनियों के नाम लिए और हमारी कार्यक्रम की नीति इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम कंपनियों का नाम लें, दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण है, एक कि कंपनी का जो पूंजी आधार है उसका वो कितना हिस्सा बाजार में बेचने को आ रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि उस कंपनी में कितने ज्यादा निवेशकों की दिलचस्पी है, जिसकी वजह से आईपीओ या एफपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब होता है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई कंपनियों में ओवर सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा हुआ, और खासतौर पर अगर हम छोटे निवेशकों की बात करें, खुदरा निवेशकों की बात करें, उनकी ओर से जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसका असर यह भी देखने को मिला कि भले ही उनका फ्लोटिंग स्टॉक अगर हम अपने श्रोताओं को बता सके कि वो शेयर जो कि बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध है, अगर उनकी संख्या ज्यादा है और उसके बावजूद उसमें अगर तेजी आ रही है तो इस बात की ओर इशारा करता है कि निवेशकों की उसमें दिलचस्पी है या फिर उस कंपनी का बुनियादी आधार जो है काफी बेहतर है। तो आप शायद ये कारण है जिसकी वजह से आप जिन कंपनियों का नाम ले रहे हैं उसमें एक तेजी देखने को मिली है।
शिशिर, इट हैज बीन अ रिमार्केबल ईयर फॉर इंडियाज आईपीओ मार्केट, एज आई थिंक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स देयर गोइंग टू बी टू आईपीओस एंड आई एम आल्सो नॉट गोइंग टू नेम द आईपीओस एंड देयर विल बी सिक्स लिस्टिंग्स happening during the week. So that's quite remarkable. What's your take on that?
See, going by the trend by the investors, going by the appetite by the investors, more and more companies are coming to the market. Second thing is much cheaper to raise capital from the market. If you go to bank and take the loan or take the borrowing, that is a very costly affair. And also, the liability to the people who are putting money in your company. I mean, if you're taking loan from the bank, it's your responsibility to pay the interest. But if you are offering share to the investor, your liability is much more limited.
Okay. We have Ratnakar from Mumbai with us. Ratnakar, a warm welcome.
Hello. Good evening, sir.
Good evening. Please ask your question.
मेरा सवाल है कि अभी मेरे पास जो एक बीटेक स्ट्रिप है शेयर की, उसमें से कुछ लॉस में है, तो ऐसे लॉस वाले स्क्रिप के जो शेयर थे वो निकालना उचित रहेगा क्या? तो कितना लॉस तक हमने बेयर करना चाहिए, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि आने वाले बजट तक कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा और किधर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? थैंक यू।
जहां तक घाटे की बात है, देखिए हम लोग एक बड़ी दिलचस्प सी परिस्थिति देखते हैं, एक विडंबना भी कह सकते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन स्टॉप गेन नहीं लगाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जब घाटा होने लगता है तो हम सोचते हैं हम कितना ज्यादा घाटा उठा सकते हैं। मुझे लगता है और मेरी राय हमेशा से ये रही है कि अगर आपके मूल में जब बट्टा लगना शुरू हो जाए तो आपके लिए बेहतर है कि उसको एवरेज करके आप उसको निकलने की कोशिश करिए। मूल को बचाए रखना आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए शेयर बाजार में। दूसरा जो आपका सवाल है कि बजट तक हम किस क्षेत्र में करें, तो अभी ठीक थोड़ी देर पहले आपके पहले एक श्रोता के सवाल के जवाब में हमने कहा कि बैंकिंग जो है खासतौर पर सरकारी बैंकों में काफी अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अगर आप उनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें और देखी होगी उस रिपोर्ट में काफी अच्छी बातें कही गई हैं, वहां काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, और थोड़ा बहुत जो है आप न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और तीसरा एक और सेक्टर है जिसपे मुझे लगता है कि आप जा सकते हैं, वो है आईटी सेक्टर।
विनय प्रसाद फ्रॉम नोएडा जॉइन्स अस नाउ। विनय, अ वार्म वेलकम। आई थिंक वी हैव लॉस्ट टच विद हिम।
व्हाट अबाउट आर यू? विनय प्रसाद नोएडा से।
या या प्लीज।
स्मार्ट सेक्टर के पूरे टीम को नमस्कार
जी,
अभिनंदन। आपके प्रोग्राम का मैं नियमित रूप से सुनता हूं और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, और आप लोग के प्रेरणा से मैं एक इन्वेस्टर हूं। और मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मार्केट अभी काफी गिर चुका है, सब्सटेंशियली गिर चुका है, इसमें अभी और कितनी गिरावट संभव है? धन्यवाद।
दो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस समय में। अगले महीने जो कि नए राष्ट्रपति अमेरिका में कार्यभार संभालेंगे, वो किस तरह की नीतियों को अपनाते हैं शेयर बाजार की दशा दिशा उस पर काफी हद तक निर्भर करेगी, और न केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया के शेयर बाजारों पे। दूसरा यह है कि बजट को लेकर के चर्चा काफी गर्म है, और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं लगभग समझ लीजिए कि 32 या 33 दिनों के बाद नया बजट आने वाला है, और उस नए बजट में सबसे ज्यादा इस बात पर जोर है कि उपभोग बढ़ाने कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, क्योंकि वो चीजें अर्बन कंजम्पशन को यानी कि शहरी इलाकों में उपभोग को प्रभावित कर रहा है, और उसकी वजह से कंपनियों की जो उत्पादक जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लाभ की स्थिति है उसके ऊपर भी असर देखने को हमें मिला है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमारी नजर है। तो एक अमेरिका में क्या होता है और दूसरा बजट में क्या होता है, ये दो चीजें अगले आप समझ लीजिए कि अगले 3 से 6 महीने में बजट की दशा माफ कीजिएगा शेयर बाजार की दशा दिशा तय करेंगे।
एनआर प्रसाद हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। आज का क्या सवाल है आपका मिस्टर प्रसाद? मिस्टर एनआर प्रसाद आर यू देयर?
या आई एम लिसनिंग
प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
Hi, good evening. This is Anar Prasad from Bangalore. Good evening, Mark and Mantra team.
Good evening.
Mr. Sinha, there are two questions. Finance Minister has announced that income tax seal is likely to go up to 15 lakhs, considering that there will be a more consumption in the last quarter, so that the Indian economy goes up. So I just want to know, this is 15 lakhs increase. Is it from immediate? Or is it post 2005? That is my first question. If at all, if the consumption goes up, I would like to know which is the best sector between the agriculture and the FMCG to invest in that case. Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, first of all, Finance Ministry has not made any announcement regarding this change in the income tax slab or income tax rebate. These all are the pre-budget, what you can say, buzz which is going on in the market. So, of course, there is one possibility is there, as I was discussing, that we need to boost the consumption, especially in urban area. So for that, we need to put more money in the hand of the people. And one way of putting more money in the hand of people is cutting the income tax slab or income tax rate. But for that, we will have to wait till February 1 when the budget will be announced. So at this moment, I cannot speculate on what is going to happen.
But Shishir, how will you correlate this with household?
Let me put the second question answer to the second question. As he talked about that, if consumption picks up, which are the sectors which we should focus on? I believe that if consumption picks up, then the FMCG sector would be in the focus, where we have seen the profitability has been affected, and of course the share prices have also been affected. So if the consumption picks up, the FMCG would be the best pick to do that.
Now, I was saying that, yeah. How do you correlate with the household consumption expenditure survey that came in yesterday?
Yeah, Mr. Mospi released this survey, which is the second successive year when they have come out. And one interesting trend is there that the per capita monthly expenditure in urban has grown by just 8.2%. But if you go to rural area, it is more than 9%. That is the real issue, because if the urban consumption is down, that is going to impact many of the sectors. If the rural consumption is picking up, that will have some impact on some of the sectors. But for the wider impact, you need to think about how the urban consumptions also pick up. So on one hand, you are seeing rural consumption is picking up. And you also need to remember that we have so many schemes for the farmers, for the workers. So those schemes are also giving some result in the rural consumption. We need to do the same thing for the urban. We cannot have any scheme for the urban consumer. So what is the way to put more money? And what is the way to put more money? Income One is tax. The way is the income tax relief. Okay.
Subrata from Bangalore is with us. A warm welcome, Subrata.
Yeah, good evening to Martin Mandra team.
Good evening.
I would like to know how to analyze one IPO stock, how to know whether the IPO is good or bad for investing. And is there any tricks so that my IPO, after investing in IPO, so that my IPO share I would get, is there any trick? That is my two questions. Thank
second,
you.
Your second part of your question is really very difficult for me because when there is an oversubscription, the only thing is a lottery which takes place for the allocation of shares. So there, I don't know that what kind of trick we should follow, but normally it is said that if you go on the lower side, that means applying for just one lot or at the best two lot, that there is a possibility of getting share, but I don't know. I mean, whether is there any evidence to that particular thing or not. Now, coming to the first part of your question, that how to judge the IPO. The best thing is just look for the two things. One, whether the company's income in terms of the turnover, whether there is a normal growth or abnormal growth. Like in 1 year, the growth is something around, say, 40%. In the other year, we are seeing some growth up to 10%. Then we are seeing another 25%. So if there is an even growth or if there is a gradual increase in the turnover as well as the profit, there is a possibility that company would be the better one. And the second thing is also look for the risk factor. When you are reading that prospectus, draft prospectus, it is not possible to read all the 800 pages of that DRHP. But whenever you see the advertisement, you must have noticed that there are risk factors. Just focus on the risk factor. What are the risks specifically for the company and what are the risks for the sector in which that company is working? So these are the two ways on which you can judge a company.
दिलीप हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं. दिलीप साहब, आप एक इंतजार कर लें जरा सा, क्योंकि एक बहुत जरूरी, दिलीप जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक जरूरी खबर वाली हम सूचना दे दें जो हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो अपने लिए अपने फोन से कैब बुक करता है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA को कैब चालकों द्वारा अलग अलग कीमतों के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं. कैब चालक कथित तौर पर एंड्रॉयड और एप्पल उपभोक्ताओं से एक ही सवारी के लिए अलग अलग किराया वसूल रहे हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने CCPA से इस मामले में विस्तृत जांच करने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. श्री जोशी ने विभाग से फूड डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी गौर करने को कहा है.
दिलीप फ्रॉम जयपुर इज विद अस नाउ. दिलीप, अ वार्म वेलकम.
जी सर, मेरा तो छोटा सा प्रश्न था खाली.
जी जी.
स्वास्थ्य मंत्रालय टीम को पहले तो बहुत बहुत संध्या की नमस्कार.
नमस्कार. सवाल पूछे.
सवाल सिर्फ इतना चाहे कि कल एक विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने ये कहा कि शेयर का भाव हमेशा बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है. वो टेम्परेरी कभी घटता है, वो एक अलग चीज है, बाकी हमेशा बढ़ता ही रहता है. ये इस पर प्रकाश डालेंगे क्या, ऐसा चेक करिए. उस समय समझ नहीं आई बात.
जी
तो बढ़ता ही है.
ठीक है, हम आपकी बात दिलीप जी समझ गए. ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमारे किसी एक्सपर्ट ने कहा होगा, वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन शिशिर, अगर इस बात को देखें कि अगर एक गिवन पीरियड में किसी भी शेयर को आप उठा लें, 10 साल 20 साल के अगर टाइम गैप पे देखें, तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स की जो जर्नी होगी वो नॉर्थवर्ड होगी.
देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि शेयरों में पैसे का निवेश नहीं होता, धैर्य का भी निवेश होता है
जी.
और दिक्कत यह है कि लोग पैसे के निवेश पर ज्यादा ध्यान देते हैं, धैर्य के निवेश पर नहीं देते हैं. अब ऐसे में यहां पर जब कोई भी कहता है कि शेयर के भाव हमेशा बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनका जो कहने का आशय होगा कि एक लंबे समय में अगर आप देखें, तो मुझे लगता है पहले वाला हिस्सा शायद वो सुने नहीं होंगे या उन्होंने शायद उन्हें याद नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि एक लंबे समय में देखें तो शायद वो कहना चाह रहे हैं कि शेयरों के भाव बढ़ते हैं
जी. इसलिए मैंने 10 साल 20 साल का
मैं कह रहा हूं कि शेयरों में निवेश को ध्यान रखिए, धैर्य का भी निवेश करिए, केवल पैसे का निवेश मत करिए.
इन मध्य प्रदेश द ई मंडी स्कीम इज बीइंग एक्सपेंडेड इन द अदर मंडीज ऑफ द स्टेट. दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 40 मोर मंडीज फ्रॉम जनवरी 1. मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट.
In Madhya Pradesh, the e-mandi scheme of Madhya Pradesh State Agriculture Marketing Board is already implemented in 42 mandis. The government has set a target to convert all 259 mandis to e-mandis by April next year. Under the e-mandi scheme, the proceedings from entry into the mandi premises to auction, weighing and payment will be computerized. The record of agriculture produce being sold by the farmers in the mandi will also be available online on a real-time basis. This will reduce crowd in the mandis and will be convenient for the farmers. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
Moving on, the US stocks ended lower yesterday while all three indices scored a weekly gain amid concerns around Donald Trump's potential trade policy and interest rate expectations for next year. The Dow Jones Industrial Average fell 333 points or 0.8% yesterday, but it is up 151.95 points or 0.4% this week, snapping a three-week losing streak. The S&P 500 declined 67 points or 1.1% to 5,970.84. However, it is up 39.99 points or 0.7% this week. The Nasdaq Composite decreased 298 points or 1.5% yesterday, but it is up 149.43 points or 0.8% this week.
Suresh, हमारे अगले कॉलर हैं. सुरेश, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर.
जी, अपना सवाल पूछ लें शशिर जी से.
हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मार्केट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वैसे बैंकों में भी है हमारे पास, तो हम क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड प्योर मेटल खरीद के, जैसे किलो दो किलो सोना खरीद के रखना चाहते हैं, ये क्या उचित हमारा निर्णय रहेगा, क्या हमें और कोई रास्ते में जाना चाहिए?
देखिए सुरेश जी, सोने में निवेश करना हो तो आपको बिस्किट खरीदना होगा. सोने में, गहनों में आप जो है वो निवेश की बात ना सोचे, क्योंकि निवेश करने का एक मकसद ये भी होता है कि जब आप उसे वापस लेने जाएं तो आपको ज्यादा मिले. अब उसमें जब आप गहने बेचने जाते हैं, कभी भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो आपको वो भाव नहीं मिल पाता है, कुछ भाव कट भी जाता है, और थोड़ा बहुत अगर बढ़ेगा भी तो उसमें उस तरीके की बढ़ोतरी नहीं दिखती है. तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप एक किलो लेना चाहते हैं, दो किलो लेना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिस्किट खरीदिएगा, आपके लिए वो बेहतर होगा.
Crude oil prices gained over 1% this week, driven by a larger than expected draw in US crude inventories and optimism about Chinese economic growth. Both benchmark Brent crude and West Texas Intermediate advanced approximately 1.4% for the week. Yesterday, Brent crude traded at $74.17 per barrel, gaining 1.24%. WTI crude also advanced nearly 1.5% to trade at around $70.60 per barrel.
Atanu Shaha, Kolkata se aaj ke hamare caller honge. Shaha sahab, namaskar, kya sawal hai aapka? Shaha sahab, aap sun pa rahe hain?
Atanu.
My question is, sir, how do we increase our consumer price? That means we are enjoying the consumer world right now, this week, consumer capabilities pricing. And another question is consumer prices index. Thank you very much.
I believe he's talking about the retail inflation, which is based on the consumer yes. price index. Mm. And that data is released on 12th of the January, which will be for related with the month of December. And since we have seen some reduction in inflation rate, so that is giving some indication that the prices which the consumer, retail consumer is paying has come down.
सोने चांदी की बात कर लें, सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोने की जो कीमत थी वो बढ़त के साथ 76,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थी. वहीं चांदी की कीमत 88,910 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई.
What is your take, Shishir, on the coming week now? Will the volatility continue, or we will have, as we've been talking about, the Santa rally continuing?
In my feeling is that the next week would be a flat market because of the holiday season, especially in the Western world. So we will not see much activity there. But after first week, or I mean after say 4th or 5th of January, we will see some action, and that will be kind of anticipation of what Donald Trump, when he will assume the presidency on 20th January, what kind of policies he is going to announce, or what kind of the first policy major.
What do you think? There will be a tariff war?
Tariff war, of course, he has already mentioned that he is going to impose China. Additional tariff on China. And that is a good news for us also, because that will give an opportunity to expand our market in the supply chain. That may not happen overnight, but over a period of, say, 1 year or 2 years, that's an opportunity which Mr. Trump is going to give us.
बस आज के लिए इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है. तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने कॉल किए उनका भी शुक्रिया, और शशिर खास तौर पर आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
थैंक यू शशिर फॉर बीइंग विद अस. Last rites of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh performed with full straight honours at Nigam Bodh Ghat in New Delhi. Domestic benchmark indices rebound with 1% gain despite sell-off by foreign institutional buyers. Union Minister for Consumer Affairs Prahlad Joshi directs Central Consumer Protection Authority to investigate allegations of differential pricing by cab aggregators. That's all we have in this edition of Market Mantra. We will be back with you tomorrow, Sunday, where we will have a special on mutual funds. Till then, goodbye and take care.
Namaskar.